नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा प्रियदर्शिनी।
यह एपिसोड डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है।
जून 2021 का महीना है, यानी कोविड-19 महामारी के साथ हम जीवन का 15वां महीना गुजार रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस महामारी का कहर जारी है। यहाँ भारत में मई में महामारी की घातक दूसरी लहर अपने चरम पर थी, जब हर दिन 4 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे थे। हालांकि महामारी का प्रकोप अब कम हो चुका है। भारत में लगभग 3,80,000 लोग महामारी के कारण जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों अन्य संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल ने देश के स्वास्थ्य तंत्र को मुश्किल में डालने के साथ ही शोधकर्ताओं को, नीति निर्माताओं को और बेशक आम जनता को चिंतित कर दिया है। कोविड-19 से तबाही बढ़ने के साथ साथ भारत के वैज्ञानिकों ने देश में इसके प्रचलित वेरिएंट्स को समझने की कोशिश बढ़ा दी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस्तेमाल में आसानी और उत्पत्ति के देश पर नामकरण से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए नोवल कोरोनावायरस के स्वरूपों या वेरिएंट्स के नाम ग्रीक अक्षरों में बदल दिए हैं। नेचर इंडिया पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि वायरस अपना रूप कैसे बदलता है, यानी उसके वेरिएंट्स कैसे बनते हैं। सर्वप्रथम भारत में दिखा डेल्टा वेरिएंट, जिसे पहले B.1.617.2 के नाम से जाना जाता था, अन्य वेरिएंट से किस तरह अलग है? क्या हमारे पास उपलब्ध मौजूदा टीके नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे? आखिर कोविड-19 का कोई वेरिएंट दरअसल विकसित कैसे होता है? हमने ये बात चित्रा पट्टाभिरामन से समझने की कोशिश की। चित्रा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलोर में अर्ली करियर फेलो हैं। वो मानव आबादी में उभरते नोवल या नए वायरसों पर काम करती हैं और उनका शोध इस बात पर केंद्रित है कि वायरसों में बदलाव कैसे आता है।
अगर आप SARS-CoV-2 वायरस को लेते हैं तो उसको बनाने के जो नियम हैं वो वायरस के अंदर हैं, जिसे हम वायरस का जीनोम कहते हैं। तो आप इसको एक लंबे धागे की तरह देख सकते हैं जिसमें 4 रंगों के मोती हैं। अब ये जो 4 रंगों के मोती हैं, ये जो हैं, ये अलग रसायन हैं, अलग केमिकल एंटिटीज हैं। ये 4 मोती इस लंबे धागे में हैं। करीब 30,000 मोती हैं और हमें इस बात से मतलब है कि ये इनका अरेंजमेंट कैसा है या ये किस क्रम में बंधे हैं और कैसे सजाए गए हैं, तो जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि SARS-CoV-2 का जीनोम सीक्वेंस है, हम 30,000 अक्षरों की बात कर रहे हैं जो टोटली एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हैं। अब जब ये वायरस एक जीव के अंदर इन्फेक्ट करके उसे अपना कॉपी बनाता है तो ये जो अक्षर होते हैं ये रेप्लिकेट या इनको दोबारा बनाया जाता है। तो वायरस जब ये बना रहा होता है तो उसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां हो और आप इसे एक कॉपियर मशीन की तरह या जेरोक्स मशीन की तरह सोच सकते हैं कि जब वो मशीन से कॉपी बन के निकलते हैं तो इंक में प्रॉब्लम के वजह से या वो क्लियर ना होने की वजह से उसमें लिखित अक्षरों में बदलाव आ सकता है। तो ये जो बदलाव हैं, जो ओरिजिनल कॉपी से अलग हैं, इन्हें हम वेरिएंट्स कहते हैं। और ये अगर आप SARS-CoV-2 के बारे में सोचेंगे तो जो वायरस वुहान चाइना में फैल रहा था, उस वायरस से अभी जो वायरस फैले हुए हैं वो अलग हैं।
इस समय हर किसी के मन में डर पैदा करने वाला वायरस का स्वरूप या वेरिएंट ऑफ कंसर्न निश्चित रूप से डेल्टा या B.1.617.2 है, जो सबसे पहले भारत में दिखा था। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के निदेशक अनुराग अग्रवाल वैज्ञानिकों के उस दल में शामिल हैं जिसने सबसे पहले SARS-CoV-2 के डेल्टा वेरिएंट को संभावित वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में चिन्हित किया था। आगे चलकर ये पूरे भारत में मुख्य वायरस वेरिएंट बन गया है। और इस समय ये ब्रिटेन, फिजी, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित कम से कम 74 देशों में फैल चुका है।
कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस अपने आप जब भी बढ़ते हैं तो म्यूटेट करते हैं, विच का मतलब बदलाव आता है। बदलाव आने से उनकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं, जो प्रॉपर्टी वायरस को कमजोर बना देती हैं वो बचती नहीं, जो उसकी क्षमता को बढ़ा देती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। जब कोई एक लिनियज बन जाती है जो नई होती है, पुराने वाले से अलग होती है, तो हम उसे वेरिएंट बोलते हैं। इस वक्त कई सारे वेरिएंट्स बन चुके हैं जिनमें या तो ज़्यादा तेज बढ़ने की क्षमता हो या फिर इम्यूनिटी को एस्केप करने की क्षमता हो, और शायद एक आध ऐसे भी हैं जिसमें डिजीज ज़्यादा सिवियर होने की क्षमता हो। तो इनको हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जिसको भारत में अभी कुछ महीनों पहले सीक्वेंस किया गया, उसको आज WHO डेल्टा वेरिएंट का नाम दे रही है, जो कि अब एक सिंपल तरीका है, लंबे लंबे शब्द B.1.617 टाइप नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसको डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ये कितनी बढ़ी हुई है और विरुलेंस कितनी बढ़ी हुई, अलग सवाल है। ट्रांसमिसिबिलिटी का सिर्फ एक मतलब होता है कि अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और वो जितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा वायरस उतना ही ट्रांसमिसिबल है। अब इसमें हम एक आर नॉट नाम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है जिसको B.1.617 भी बोलते थे, .2 पर्टिकुलरली, इसमें लगभग जो इसके पुराना सबसे पहला जो अल्फा वेरिएंट था जिसको B.1.1.7 बोलते थे, लगभग आधा इंसान और है जो इन्फेक्ट हो जाता है। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन इससे इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है।
दिसंबर 2020 से लेके अब तक काफी सारे ऐसे विविध SARS-CoV-2 के जीनोम सामने आए हैं जिनके प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो ये वायरस जो हैं, जिनमें ऐसे बदलाव आए हैं, वो ज्यादा फैल सकते हैं या वो लोगों को दोबारा इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जब उनके प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं तब हम उन पे फोकस कर रहे हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये वायरस अभी करीबन 1-1.5 साल से हमारे साथ है, इसमें काफी परिवर्तन आ गए हैं और हमें उन परिवर्तनों से मतलब है जिनसे ये वायरस ज्यादा कामयाब हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में काफी ऐसे वायरस आए हैं जो कामयाब नहीं हुए हैं और पीछे छूट भी गए हैं। तो ये सब SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स कहलाएंगे, पर उनमें से जो ज्यादा कामयाब हो सकते हैं या ज्यादा फैल सकते हैं या लोगों को वापस से इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन सब को हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के नाम से बुलाते हैं। और अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं, हम इन्हीं को ट्रैक कर रहे हैं।
वायरस का आबादी के बीच प्रसार काफी कुछ उसके स्पाइक प्रोटीन में आए बदलावों पर निर्भर करता है। स्पाइक प्रोटीन वायरस की सतह पर उभरे उन नोकदार हिस्सों को कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना या मुकुट जैसा नजर आता है। इसलिए वायरस के वेरिएंट को समझने के लिए स्पाइक प्रोटीन में आने वाले बदलाव को समझना होगा। भारत में इस सिलसिले में अनुसंधान की गति अभी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अग्रणी देशों के मुकाबले धीमी है, इसलिए नए वेरिएंट की उत्पत्ति और संक्रमण की नई लहर को रोकने के लिए जरूरी उपायों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि भारत में COVID-19 की तीसरी लहर कब तक आने की आशंका है।
वेरिएंट को रोकने के लिए हमारे पास दो ही हथियार हैं, जो कि दोनों के दोनों एक काम करते हैं, वेरिएंट को इन्फेक्शन में बढ़ने से रोकते हैं, मतलब इन्फेक्शन कम होंगे तो वेरिएंट कम पैदा होंगे। पहला है पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जो कि आप जानते ही हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जहां आप काम करते हैं इंडोर एरियाज, कंजेस्टेड एरियाज, पुअर वेंटिलेशन एरियाज, इन सबको कम रखना, और दूसरा वैक्सीनेशन। जितना आपका वैक्सीनेशन ज्यादा होगा उतना कम वायरस प्रोपोगेट कर पाएगा और उसका मतलब वेरिएंट्स कम बनेंगे।
आम लोगों के साथ साथ जन स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़े लोगों में भी इस बात को लेकर चिंता है कि क्या मौजूदा टीके तमाम उभरते वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो पाएंगे या नहीं। इस बारे में अभी तक क्या जानकारी उपलब्ध है? हम ने अनुराग अग्रवाल और चित्रा पट्टाभिरामन से इस बारे में विस्तार से जानना चाहा।
लेकिन हाँ, जब से ये वेरिएंट आए हैं तब से जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें इन्फेक्शन ज्यादा देखे गए हैं। शुरू शुरू में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट्स थी कि 80% प्रोटेक्शन, 90% प्रोटेक्शन। इसमें तीन लेवल पे हम देख रहे हैं। पहला, हम अस्पतालों में देख रहे हैं कि कई डॉक्टर, कई हेल्थ केयर वर्कर जिनको दोनों शॉट लग चुके थे उसके बावजूद उनको इन्फेक्शन हो गया। और कुछ रिपोर्ट निकल चुकी हैं, जैसे अपोलो ने बताया है, कुछ और हॉस्पिटल्स ने बताया है। ये कह सकते हैं कि लगभग कुछ महीनों के अंदर अंदर 10% लोग इन्फेक्ट हो गए। इसका मतलब जो वैक्सीनेशन का ब्रेक थ्रू रेट है वो ट्रायल के टाइम से बढ़ चुका है। नेशनल लेवल का भी डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का काफी डेटा आ गया है, जो कि अभी थोड़ा सैंपल साइज छोटा है, लेकिन दिखा रहा है कि एक शॉट से भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, 33% के आसपास इन्फेक्शन से। लगभग 60% प्रोटेक्शन दो इंजेक्शन के बाद, कोविशील्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, एस्ट्राजेनेका। वैक्सीनेशन से चाहे वेरिएंट भी हो, सीवियर डिजीज और मौत की काफी अच्छी प्रोटेक्शन है, लेकिन हाँ हल्की इन्फेक्शन हो रही है।
सो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो नए रूप इस वायरस के जो ज्यादा कामयाब हैं या ज्यादा फैल सकते हैं, ऐसे जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न मैंने आपको बताया, ये अभी हाल ही में हमें पता चला इनके बारे में, और इस वजह से इनके बारे में अभी इतना डेटा हम नहीं गैदर कर पाए हैं। पर और टीका भी अभी हाल ही में बना है, और अभी आपको पता है कि काफी देशों में टीके लग रहे हैं, पर अभी इतने सारे भी नहीं है कि हम इसके बारे में अच्छे से जान सकें। पर अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि जो टीका अभी बना है वो वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है।
चलिए, ये जानकर अच्छा लगा। इसलिए हमें आगे भी मौजूदा जन स्वास्थ्य उपायों का पालन करते रहना होगा, यानी मुख्य रूप से मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना और जितनी जल्दी हो सके टीका लगवाना। लेकिन एक और अहम हस्तक्षेप की ज़रूरत है, और वो है नए वेरिएंट को जल्दी से पहचानना। शायद इसलिए जीन सीक्वेंसिंग या जीनोमिक निगरानी बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर चित्रा पट्टाभिरामन और अनुराग अग्रवाल को सुनते हैं।
अभी भी हमारी कोशिश यही है कि हम जो वेरिएंट्स फैल रहे हैं उनके बारे में और जानें और सीखें, और लैब में उनको स्टडी करके देखें कि टीके कितने प्रभावी हैं। क्योंकि जो पहले ये वेरिएंट्स निकले थे, जो साउथ अफ्रीका से एक वेरिएंट निकला था पिछले साल, उसमें लैब में हमने देखा था, लोगों ने जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, अन्य वैज्ञानिकों ने देखा था कि ये ऐसा हो सकता है कि जो इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं, जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी या वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ काम ना करें।
अभी अगर एक वेरिएंट बनता है और हमें देखना है कि वो वेरिएंट कंसर्न का है या नहीं है, तो हमें इंतजार करना पड़ता है 2-3 महीने। उसकी पहले सैंपल आएगा, फिर वो सीक्वेंस होगा, उसके बाद उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन होगी कि सच में कुछ आउटब्रेक थी या नहीं थी, तो इसमें 3 महीने लग जाते हैं। अगर हम सीक्वेंसिंग को थोड़ा लोकल कर देंगे, लैब्स बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, तो हम 3 हफ्ते इसमें से काट सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि 3 हफ्ते काटने नहीं, हम तो 3 हफ्ते के अंदर ही वेरिएंट के पैदा होते ही बता देंगे कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया है, तो ये हमें कंप्यूटर्स में ही डिटेक्ट करना पड़ेगा जैसे ही कि ये म्यूटेशन नजर आए। उसके लिए अभी काफ़ी साइंस को एडवांस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन कोशिश है कि ये सारी चीजें साथ साथ करते करते हम वहां तक पहुंच जाएंगे।
निस्संदेह ये अच्छी प्रगति है, लेकिन नए उभरते वेरिएंट को जल्दी ट्रैक करने के लिए कहीं अधिक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए नई तकनीकों का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए कोविड टेस्ट लोगों को सार्स कोविड 2 से संक्रमित होने की पुष्टि करने के अलावा वेरियंट्स के बारे में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस समय इसकी तकनीक के विकास का काम चल रहा है। साथ ही जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं, हमें भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपना काम करें, मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और जितनी जल्दी संभव हो सके टीका ज़रूर लगवाएं। हम भारत में विज्ञान से जुड़े विषयों पर जल्दी ही एक और विचारणीय एपिसोड के साथ वापस आएंगे। तब तक अधिक जानकारी के लिए आप नेचर के पॉडकास्ट कोरोना पॉड के अंकों को सुन सकते हैं। और हाँ, हिंदी और अंग्रेज़ी में नए एपिसोड के लिए नेचर इंडिया पॉडकास्ट पर जरूर आएं। मैं हूं शुभ्रा प्रियदर्शनी और आप सुन रहे थे नेचर इंडिया पॉडकास्ट।
इस एपिसोड के निर्माण में समर्थन के लिए DBT वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।